संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन मित्रे हमारे ध्यान में। पर्यटन सार परमागम की तत्व प्रदीप का टीका का मंगलाचरण के जो तीन छंद थे वो हो गए, और उसके बाद में एक छंद जयसेन आचार्य की टीका का भी इसमें दिया है, इसे भी अपन देख लेते हैं। अनुशीलन में दिया है पेज नंबर 14 पर। पढ़ो जयसेनाचार्य ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। समय साथ में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था मंगलाचरण ने। जयसेनाचार्य ने प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में वो सिद्ध भगवान को याद किया। उन्हें उसने समय साराय कहा था, इनने परमागम साराय कहा कि परमागम को अध्ययन, परमागम माने अध्यात्म शास्त्र, ये जानते हैं आप। ये बाकी के शास्त्र हैं अपने आगम, और जो समय सार प्रवचन सार ये हैं परमागम। तो आगम और परमागम का ये अंतर कैसे कैसे किया, तो जितने नए हैं ना तो उसमें जिसमें परम शुद्ध निश्चय नए की चर्चा हो वो परमागम, और बाकी के नयों की जिसमें चर्चा हो वो आगम, और जो भी चर्चा हो। आगम के दो भेद किए, खासकर जब सोनगढ़ में परमागम मंदिर बनने लगा तो उधर सीतांबरों में नेपाली ताना में एक आगम मंदिर बनाया है, तो उनके जितने आगम हैं वे कहते हैं कि भगवान महावीर की वाणी के सीधे निकले हुए वो ही हैं मूल, और उनको भी आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उनको उसमें उन्होंने लिखाया, तो इसका नाम रखा अपने परमागम मंदिर, और इसमें समय सार वगैरह लिखाए। तो वो ये कहने लगे, देखो अपने से बड़ा बताने के लिए इनने परमागम रखा, नहीं तो ये उनका आगम है ये हमारा आगम है। दोनों के आगम भी बट गए, जैसे भगवान बट गए तो आगम माने शास्त्र भी बट गए, तो इन्हें आगम कहते हैं अपना, इन दोनों आगम ही हैं, लेकिन हमें तुमसे बड़ा दिखना है ना, इसलिए इनने वहां का मंदिर का नाम परमागम मंदिर रखा। उसे देखने भी गए थे वहां पालीताना के मंदिर को, जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं वो सभी मिलके ट्रस्ट ग्रुप बना करके गए थे, ये बनारस भी गए थे, पंडित हिम्मत भाई बजू भाई ये सब गए थे। बनारस में मानस मंदिर है, पूरी रामायण वहां लिखी हुई है तुलसीदास जी की, तो वो देखने भी गए थे कि परमागम मंदिर हम बनाएं, तो उसके पहले जहां जहां इस टाइप के मंदिर बने हैं जैनों में अजैनों में उन्हें सब देख के आए, तो चर्चा का विषय तो बनता ही था ना। और वे भले ही कुछ दिगंबर हो गए स्वामी जी की वजह से, कुछ श्वेतांबर हैं, लेकिन वे रिश्तेदार तो आपस में हैं ही ना, जातिगत संबंध है, मिलने जुलने के सारे संबंध हैं। तो गुरुदेव प्रचन में बोलते थे कि वो ऐसा आरोप अपने पर लगाते हैं, लेकिन हमने तो हमारे मन में तो कोई ऐसी बात आई नहीं कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए हमने परमागम, अपने समय सार वगैरह परमागम हैं इसलिए हमने परमागम मंदिर लिखा। लेकिन कहीं शास्त्र में नहीं मिलता कि ये परमागम है, किन्हीं किन्हीं पापन परमागम कहा, ये ऐसा ऐसा गुरुदेव बोलते थे। ऐसे कई प्रकरण आए कि जिन बारे में गुरुदेव श्री ऐसा बोला करते थे, और उनके बारे में मैंने गुरुदेव श्री को जनागम में से निकाल के तो क्या, मुझे पता था कि तो पढ़ने में आ गए थे, तो उन्हें बताई। मैंने कहा महाराज है तो लिखा है, जैसे आचार्य ने अपनी टीका में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जिसमें सारे लोकालोक का सबका वर्णन हो वो आगम, और जिसमें आत्मा का वर्णन हो वो परमागम। ऐसा और दो एक दो जगह जहां जहां में मिला है, सर अपन ने अपनी किताब में लिखा है कि वहां उनने बताया है परमागम का और आगम का भेद किया। तो फिर कह गए तो तुमने कोई बड़ा बड़ा समझ गए, उनसे बड़े हैं तो हमने परमागम नाम रख लिया उनका। तो कहे नहीं, परम शुद्ध निश्चय में का विषय है, इसलिए परमागम है हमारे यहां सब जो परमात्मा। तो परमागम के विषय से जो बने ना निशुद्ध निश्चय के आश्रय से, इसलिए वो परमात्मा। जहां जहां परम शब्द लगाया है, तो कल बताया था ना, एक तो वो पर वाला परम, ये अपर वाला परम है ना, और एक जो परम शुद्ध निश्चय वाला परम, इसको भी पर पर बोलते हैं, ख्याल नहीं ना। और दो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो इसमें परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वर्णन है, इसलिए परम वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो समय साल वगैरह में वो चीजें हैं, इसलिए इन्हें परमागम कहते हैं। अरे यही लिखा है, जैसे कल अपन ने पढ़ा था, क्या था परमागम में, भूल गए जल्दी से, प्यारे परमानंद जो इन्हें कहते हैं कि परम चैतन्य स्वात्म स्वात्मोच्च सुख संप्रदे। जो परम चैतन्य माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है, उस आत्मा से उच्च माने उत्पन्न हुआ जो सुख, वही है संपत्ति जिसकी है। परम चैतन्य स्वात्मोच्च सुख संपदे, भले ही इतना बड़ा अक्षर हो गया, ये समस्त पद है, ये सारे अक्षर मिल गए आपस में, तो इनमें कैसे मिलते हैं, तो इसमें कई समास लग जाते हैं, कहीं बहुब्रीहि, कहीं तत्पुरुष, कहीं ऐसा। तो अभी थोड़े से इनका ज्ञान होना चाहिए। गोपाल दास बरैया अपना एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, कि बीच में विद्वानों की परंपरा नष्ट हो गई थी, तो उसे द्वारा उठाने में गोपाल दास जी बरैया का बहुत बड़ा हाथ है। वे न्याय के, पंचाध्यायी के वगैरह के और करुणान योग के बहुत अच्छे विद्वानों में से थे। उमरेना विद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी, उसका नाम भी गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत विद्यालय है। संस्कृत के भी विद्वान थे, तो किसी ने उनसे कहा हिंदू पंडित ने कि तुम चाहे जितने बड़े बनो, लेकिन है वो तो आखिर गोपाल के ही दास हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम महावीर दास नहीं रखा है क्या? तुम्हारे 24 तीर्थंकरों के नाम के साथ दास लगा के तुम्हारा नाम नहीं रखा? हमारे जो गोपाल भगवान है ना, उनका दास तुम्हें बनाया, गोपाल दास तुम्हारा नाम रखा। तो उनने जवाब दिया कि गोपाल दास तो रखा, लेकिन बहुब्रीय समाज से रखा, तत्पुरुष समाज से नहीं। अपने जो सबसे बड़े विद्वान थे, विद्वानों के विद्वान, उनका ये जवाब है। अब तुम लोग भी विद्वान बन गए, मैंने व्याकरण की सिद्धांत कौमली तो पढ़ ही गए ना, तो उसने समास वाला प्रकरण भी पढ़ ही लिया होगा। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, षष्ठी तत्पुरुष है ये, शशिधर गोपाला गोपाल का दास गोपाल दास माने गोपालस्य दासा इति गोपाल दासा गोपाल का दास भगवान दास कहता। तो उनने कहा कि मेरे नाम की व्युत्पत्ति ऐसी नहीं है, ये बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास कैसा होता है? गोपाल है दास जिसका, उसे कहते हैं गोपाल दास। गोपाला दासा यशसा गोपाल दासा। आता तुम्हें आया था, पढ़ाया था कि नहीं, कुछ याद है कि नहीं? लक्ष्मीनारायण गोमती सब ऐसे ही पढ़ लेते हैं और ऐसी चलती है, लेकिन वो उसका जो लाभ होना होता है वो हो जाता है और जिंदगी भर फिर उस लाभ से अपना काम चलता रहता है। लक्ष्मीनारायण गोमती भूल जाते हैं, लेकिन उससे जो व्याकरण हमें आ जाती है, जो भाषा आ जाती है, उससे ही हमारा काम चलता रहता है। यदि वो भी क्या होता? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सके। अपने विद्यार्थियों में भी बहुत कम होंगे जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सकते हैं। मैं भी नहीं पढ़ा सकता, ये बीच बीच में कुछ बता देता हूं, इसका मतलब मैं उसका बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसा नहीं है। अपने मतलब कही आता है, समझिए ना। हमने कोशिश की थी, एक ब्राह्मण पंडित जी थे, क्या नाम था उनका?
गुरु
हाँ परमेश्वर जी मिश्र, वो पढ़ाते थे। जब उनको पहले से पहले आए वो शांति जी और उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम बैठे, और वो पादनी जी थे और एक दो जने थे, तो उन्हें कही बातचीत करके कि आप क्या लेंगे, मतलब तनख्वाह क्या लेंगे। तो उन्होंने साथ 500 रुपया कहा, दो घंटे आगे पढ़ाऊंगा, 500 रुपया लूंगा। तो मैंने दिया, बोले ठीक है ठीक है। फिर तो सब बात कर दी, तो पानी जी अरे आपने एकदम हाँ कर दी, अरे कहते थोड़े बहुत कम जाते। पानी जी क्या बात कर रहे हो, मैं तो समझता था कि उनको 1000 रुपये से कम नहीं मांगे, 1000 रुपये से कम देना नहीं चाहिए। तो गलती की मैंने, मुझे 1000 रुपये कहना चाहिए था। आप समझते नहीं हो कि ये क्या चीज है। ऐसा कहें अब बहुत बहुत नहीं है, सारी जैन समाज में भी दो चार लोग ही ऐसे मिलेंगे, तुम्हारे 700 विद्वानों में भी और उनमें सब मिला मिलू करके, कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ा सकते हैं पूरी तरह ढंग से। वो परीक्षा में पास कराने के लिए पढ़ा देने की अलग बात है, उसमें मतलब पूरा व्याकरण आ गया है संस्कृत का, और विश्व के व्याकरणों में संस्कृत का व्याकरण ही सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। और वो पाणिनि का है, बस वो अष्टाध्यायी से फिर वो लघु कौमुदी बनी, सिद्धांत कौमुदी बनी, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी बनी, तो छोटी फिर मंझली फिर बड़ी, तीन चार बनी, अंत में इस लघु सिद्धांत कौमुदी जिंदा रह गई। और उनका पठन पाठन बहुत कम हो गया, सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन कम हो गया। पहले एक ने कौमुदी बनाई थी सिद्धांत कौमुदी, तो भाई तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत कठिन हो गई है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी बना देते हैं, तो लघु बना दी उसी में काट पीट के, तो कहा ये बहुत छोटी हो गई। एक ने मध्य सिद्धांत कौमुदी बना दी, अरे तीनों ही पढ़ाई जाती है बनारस में, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो गोपाल दास बरैया मतलब उन विद्वानों में से थे। टोडरमल जी के बारे में भी ऐसी बात आती है, लेकिन टोडरमल को दास नाम था ही नहीं, ये हम कैसे कह सकते टोडरमल जी है। वो बंसीधर के लिए उन्होंने कहा था कि तुम्हारा गुरु तो आकर बंसीधर ही है, तो उनने कहा था बंसीधर माने, फिर ऐसी व्याख्या कुछ उन्होंने की थी और बताई थी टोडरमल जी ने, इसका ऐसा अर्थ नहीं है जो आप बता रहे हो। लेकिन गोपाल दास जी बरैया की देवी बहुत ही प्रसिद्ध है, कि गोपाल दासा यस्य सा, गोपाल है दास जिसका। ये जो अपना मंगलाचरण है ये देशनाचारी का, परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे, यानी सुख संपदा कैसी है कि परम चैतन्य रूप जो अपना आत्मा उसके आश्रय से उत्पन्न हुई है ना, परम चैतन्य है ना। अब ऐसे करेंगे हिंदी में, परम जो चैतन्य वह मैं, ऐसा मेरा आत्मा, और उस आत्मा के आश्रय से जो सुख और संपदा उत्पन्न हुई, और फिर कहेंगे वो लगाएंगे षष्ठी चतुर्थी संपदे, ऐसी संपदा में सप्तमी का एक वचन लगाएंगे जो, समझे ना, संपदे वो इसमें कई समास लग जाएंगे एक वाक्य बनाने में। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा जोड़ दिया तो एक वाक्य बन गया, और फिर ऐसे ऐसे निशान लगा के अलग अलग कर दिए शांति जी तो अलग अलग हो गए, ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं। समझे, आप लोग अर्थ करते होंगे ना, पढ़ाते होंगे तो ऐसे ही अर्थ तोड़ के पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही निकालते हैं कि ना अलग अलग। परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदा संपदे और परमागमस्य सार, वो है संपत्ति जिनकी, और जो परमागम के सार हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठ ने, सिद्ध परमेष्ठी, और उनके लिए नमः, नमस्कार हो, नमः है सबसे पहले, नमः लगा तो यहां भी एक नमः है और पीछे भी था ना, देखा पीछे अमृतचंद के में आसानी से पलटते नहीं है मेरे से। मंगला जी ने पहला संध्या नहीं था, देखो सर्वव्यापी के चिद्रूपे स्वरूपाय परात्मने स्वत्म उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः, इनने नमः से खत्म किया और उनने नमः से शुरू किया। संस्कृत की ये विशेषता है, जैसे अंग्रेजी में है आई एम गोइंग, तो आई के बाद में एम लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं आई गोइंग एम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जाता हूं तो बाद में है ना, लेकिन वह नियम है कि कर्ता के बाद क्रिया को लगाना ही पड़ेगा, बाद में जो कूड़ा करकट भरना है भर दो, ये और लगा देते हैं कर्म करण संपदान अपादान, ये सब एक बीच के कूड़ा करकट है वाक्य के, उनसे बढ़ा दो, जातना लंबा कर दो, छोटा कर दो, दो विशेषण कम कर दो, दो विशेषण ज्यादा कर दो, इतना तो चाहिए चाहिए ना। लेकिन संस्कृत में, हिंदी में भी ऐसी है, मैं जाता हूं, मैं ऐसा नहीं कह, मैं मतलब जाता हूं स्टेशन, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं स्टेशन जाता हूं बोलेगा, मतलब वही शुद्ध हिंदी वही कहलाएगी है ना। लेकिन संस्कृत में हम गच्छामि, गच्छा में हम, चाहे इसे आगे कर दो चाहे उसे आगे कर दो, चाहे बीज वाले को आगे कर दो, चाहे कर्ता को चाहे कर्म को चाहे करण को चाहे संप्रदान को, किसी को ही कर दो, कि कैसे कर दो अपनी मर्जी से, कि मर्जी नहीं उसमें नियम है, यदि पर और उपकार, तो उपकार और पर करने से कोई संधि समास होता है तो कर दो। अब पर और उपकार करने में ऐसा ही रखने में होता है परोपकार, तो ऐसा ही रख लिया। अब वैसे कई और शब्द हो सकते हैं कि जिनका हम स्थान बदल दें तो बहु हो सकता है, जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, तो एक गच्छामि बाद में और हम पहले है, तो अभी इनमें कुछ नहीं हो सकता है, समझा। तो हम क्या करेंगे, गच्छामि और अहम पलट दिया, क्यों कि गच्छामि की मी की ई और अहम का आ तो एन संधि हो जाएगी है? आगे अच हो आ हो और पीछे ई हो तो ई का और आ मिलकर के या हो जाता है, ये कोई अनैच्छी सूत्र है ना, इत्यादि इति आदि इत्यादि होता या नहीं होता, परोपकार गुण संधि हो गई। तो वो हमने क्यों पलटी, अहम गच्छामि कहने में ज्यादा जगह लगती है, समय ज्यादा लगता है, जगह छोड़ना पड़ती है, बीच में दो शब्द लिखने पड़ते हैं, हमने एक ही बना दिया गच्छामि अहम गच्छाम में हम, समझे ना, फिर और फायदा होता है कि चार शब्द हमने ऐसे मिला दिए तो हमें एक ही विभक्ति लगानी पड़ेगी चारों में, चार जगह चार विभक्तियां नहीं लगानी पड़ेंगी, अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग विभक्तियां लगानी पड़ेंगी। अरे आगे रामस्य परस रामस्य रामौ रामा रामा तो रामौ हो जाता ना, तो दो राम हो गए ना, तो कौन, एक दासरथी राम और एक परशु राम, एक भी धनुष वाले राम और एक परसा वाले राम, और दोनों राम को हमने रामव कह दिया, और द्वंद समास ही हो गया उन्हें रामस्य रामस्य रामव। तो ये जो इस वजह से संस्कृत में बहुत कम जगह घिरती है, संस्कृत की में जो तीन लाइनें हैं उसका हिंदी करेंगे तो उसमें कम से कम छह लाइन तो लगेंगी लगेंगी, और छह लाइन की हिंदी को दो लाइन की संस्कृत में समझ सकते हैं। तो जिस जमाने में जगह की बहुत कमी थी, कागज की बहुत कमी थी, साथ में बोझा रखकर ले जाने की बहुत कमी थी, है ना, उस जमाने में क्या करते हैं, पर उसका बहुत असर बाद तक चला आया। जैसे मैंने एक आदर बताया था, हिंदी में भी लोग विभक्ति को जोड़ने लग गए, फिर राम को, तो राम और को मिला के लिखेंगे, समझे ना, और अपन अलग लिखेंगे, राम अलग लिखेंगे, को अलग लिखेंगे, समझे ना, राम को, तो एक विभक्ति को तोड़ के तो विभक्ति को जोड़ के लिखने की प्रवृत्ति संस्कृत की है, इसे बोलते हैं वियोगी भाषा की प्रकृति और संयोगी भाषा की भाषा, प्रकृति की भाषा, संयोगी प्रकृति की भाषा और वियोगी प्रकृति की भाषा, हिंदी वियोगी प्रकृति की भाषा है। जब सबसे पहले मोक्षनाथ प्रकाशक हमने जयपुर में छापा था, सन 67-68 में आया था मैं, तब छापा था, तो शांति जी कम से कम 5000 विभक्तियां मैंने तोड़ी होंगी छपने में, प्रेस में निशान लगा लगा करके, एक एक पेज में 25-25 जगह वो जुड़ी होती है, उसे जोड़ जोड़ के अलग करो। अभी तुमने ऐसी कोई किताब में देखा ही नहीं होगा इस दृष्टि से कि यहां इसमें जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। अब इसमें दोनों ही छपी हैं, संस्कृत भी छपी और हिंदी भी छपी, तो आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, तो संस्कृत में जहां होगी हर जगह विभक्ति जोड़नी पड़ेगी और हिंदी में सब जगह तोड़नी पड़ेगी। राम से राम का तो राम ऐसा कहीं लिखते हैं कि राम और श्या अलग सामने मिला के अकेला, नहीं नहीं राम से मिला के लिखते थे ना, और राम का अलग करके लिखते हैं। अब वो कुछ लोगों ने मिला के ही लिखना चालू रखा है ना, कुछ प्रेस वालों को ऐसी आदत पड़ गई, उनके प्रूफ रीडर ऐसे हो गए कि इस तरह की पद्धति चली। तो सबसे पहले तो यदि हम आपसे कहेंगे कि तुम इसका प्रूफ रीडिंग कर दोगे, तो सबसे पहले तुमको हमसे ये पूछना चाहिए कि विभक्तियां तोड़ के रखोगे क्या इकट्ठी, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि असली प्रूफ रीडर है, लाओ कर देंगे, क्या करोगे ऐसे हम आप बताएं तुम क्या करोगे, जैसा आएगा जैसा वहां देखेंगे वैसा कर देंगे, तो तुम प्रूफ रीडर नहीं हो। यदि वो पुरानी किताब है और उस किताब से उसने प्रूफ लिखी है और उसमें विभक्ति जुड़ी हुई है तो हम विभक्ति तोड़ के हैं, तो हम जब विभक्ति तोड़ेंगे तो हम प्रूफ रीडर हैं, ऐसा नहीं मक्खी की मक्खी मार देना, क्या वैसी उसमें थी वैसी हमने कर दी, फिर उसमें एक जगह आएगी मिली हुई और एक जगह आएगी बिना मिली हुई, फिर क्या करोगे? क्यों? तो हम वैसे कर रहे हैं, मैंने सोचने का किसी का कोई काम नहीं है, ना पहले वाले का, ना तुम्हारा, ना अगले वाले का। जैसे जहां होगी वैसी वहां हम कर देंगे। और इतना भी ध्यान कहां रखते हैं कि जैसी जहां हो वहां वैसी कर दें, एक जगह ये कर देंगे, दूसरी जगह ये कर देंगे, एक पेज में तीन जगह तीन तरीके जैसा कर लेंगे। सीधी सच्ची बात यह है कि तुम्हें हिंदी आती ही नहीं, क्या? और क्या नहीं आता? क्योंकि हिंदी की एबीसीडी नहीं आती। एबीसीडी तो है ये, उस प्रूफ रीडर को आती है ये, और नहीं उस कंपोज करने वाले को आती है, आनी चाहिए। उस हर एक आदमी एक से ही थोड़ी होता है, कि सर ये बहुत अच्छा कंपोजिटर जी नहीं है, हाँ दादा तो इससे ही करवाते हैं। अरे तुम समझते नहीं, वो संस्कृत है, शास्त्री है, मेरी किताबों की प्रीव्यू ने उन्होंने 10 साल से की है, तो वो सब समझता है। तो मुझे उसे मैं 1/10% मेहनत हो जाती है, और तुमसे कराऊंगा 10 दफे सुधारूंगा, और फिर तुमको 1 दफे पहले ट्रेनिंग दूंगा, पूरी ट्रेनिंग देके पूरी पढ़ाई करूंगा, साल भर में 2 साल में तुम पढ़ के निकल जाओगे और फिर मेरे लिए दूसरा विद्यार्थी आ जाएगा, मैं जिंदगी सिखाते ही रहूंगा। एक अच्छा कंपोजिटर मिलना भी मुश्किल है। मुझे नहीं मिला, नहीं मिलता है। वो है दिनेश, इसी में मैं रखता हूं अपने पास में, और बहुत ऐसे हैं। क्यों? दिक्कत यह है कि वो अपने को कंपोजिटर जो है समझता है, मैं छोटा आदमी हूं, हम उसे छोटा आदमी समझते हैं, जबकि वो स्पेशलिस्ट है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है, है ना? और हम बजे पंडित जी, विद्वान जी, बड़े हैं, गद्दी पे बैठ के प्रश्न कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है। मालूम है आज सुबह जिस लड़के ने गुरुदेव क्या किसका वो बताया था ना, वृद्धन का अनुसार, उसने 4 बड़ी बड़ी गलतियां की थी। मैंने तुम ऐसा गुरु जीओं को बताई कि 4 की थी, अभी इतना ही बताई। वो तो जब पूरा मैं सुनूंगा तो बता सकता हूं, क्योंकि हम भूल गया अभी नाम क्या थी 4, लेकिन 4 गलतियां थी माफ नहीं करने लायक। हर चीज को सुनना, देखना, पढ़ना, उस बारीकी से देखना चाहिए ना। अपना छंद हो गया ना, कहां गया वो? पीछे आ गया थे ना, नमा 14 पेज है। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे याद नहीं हो जाएगा। और तुम उस लेन को भी नहीं रिपीट करोगे, तुम अगली लेन में बोलोगे, मैं वो दूंगा। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे, परमागम के सार। अब परमागम के सार क्या क्या मतलब है? कि देशना लब्धि के माध्यम से भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है, पहले निमित्त की अपेक्षा और उपादान की अपेक्षा आत्मा की अनुभूति से होती है, इसलिए उसे परमागम का सार कहा। कि क्या शास्त्रों में क्या है, परमागम में क्या लिखा है, हमें सार में क्या है? तो एक शुद्धात्मा का वर्णन है। किसके शुद्धात्मा का? अपने शुद्धात्मा का वर्णन। इसका नाम है परमागम का सार, है ना? परमागम से सारा है, सिद्धा है, सिद्ध है वो। ऐसे 5 परमेश्वरियों में सिद्ध परमेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूं। समय सार में भी किया, और ये क्या है प्रवचन सार का? तात्पर्य वृत्ति का मंगलाचरण किनका लिखा हुआ? जयसेनाचार्य का। अभी अपन मूल बातों पर चलते हैं। चलो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, ये अपन ने यहां अपन ने छापा ना, अभी ये यहां नहीं छापना चाहिए था। पर तो ये तीनों छंद बाद में आना चाहिए था, क्यों शांति जी यहां क्यों छापा जी? मैं वो सब कारण है वो बताता जाता हूं, जो 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 मैंने सोच सोच के किया है, समझे ना? क्योंकि वो मंगलाचरण तीनों अध्याय के हैं, उन अध्यायों में अलग से मंगलाचरण नहीं लिखे। तो फिर इसके शुरू में छापते ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के शुरू में, वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के मंगलाचरण रह जाते हैं। आया आ गया समझ में कि नहीं? बोलो बताओ क्या क्या समझ में आया? बोलो क्या कहा मैंने? कुछ पूछा है, कुछ पूछा है, कुछ कह रहे हैं, अभी यही पता नहीं है। ये मंगलाचरण तीन छंदों का अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार लिख रहे। जब हमने प्रवचन सार शुरू किया था, उसकी टीका शुरू करी है, तो उसके जब पहले ऊपर ये लिख देते और उसके बाद ये मंगलाचरण लिखना चाहिए था, मेरा ये प्रश्न है। और क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि ये तीनों का मंगलाचरण है, तीनों अध्याय है आगे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानी उसी तक चूल का, तो तीनों को कवर करे इसके लिए वो ऐसा किया। ऐसा छूट गया, गलती से रह गया हो ऐसा नहीं, फिर बाद में भविष्य में आपको ये रिसर्च नहीं कर रहे, करना पड़े और करना पड़े तो इससे मदद मिले थोड़ी, ख्याल नहीं ना? इस प्रकार मंगलाचरण और टीका लिखने की प्रतिज्ञा करने के उपरांत, पहले मंगलाचरण करते थे तो उसमें प्रतिज्ञा वाक्य भी करते थे कि मैं ये काम करूंगा। अपने आज शास्त्र के पढ़ने के पहले मंगलाचरण बोला जाता है परंपरागत, उसमें ये बात बतानी पड़ती है, ओंकारों बिंदु संयुक्तम नित्यम जायंती योगना, वो है ना? तो उसमें आते हैं तो ये कहते मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देवी ने विचितम, है ना? उनके द्वारा रचा गया ये शास्त्र और इसको मैं यहां पढ़ रहा हूं, ये बताना पड़ता है। अब इसको मैं लिख रहा हूं, जैसे उन्होंने कहा ना कि अब मैं रतन सारस्य वृत्ति नियम पंक्ति थी ना पिछले, हमें मेरे से बार बार खुलता नहीं है, मैं बोलूंगा, खोलने का काम तुम करना। प्रवचन सार से वृत्ति नियम, प्रवचन सार की यह वृत्ति मैं अब लिखता हूं, तो इनने ये प्रतिज्ञा की है, और अभी गाथाएं आएंगी तो गाथाओं में भी अपन देखेंगे, वे भी अपनी अलग प्रतिज्ञा करेंगे। अभी अपन ये जो पढ़ेंगे अभी, ये पहले एक दफे गाथा पाठ करो मंगलाचरण का, उसके वो पहले पढ़ेंगे, अभी दो पेज छोड़ नहीं दिए हैं। हाँ चलो, उपसमयामि सम्मम जत्तोस्त बाण संपत्ति, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्माण की संपत्ति की प्राप्ति होती है। माने ये मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ, एक तरह से उनकी प्रतिज्ञा है कि प्रवचन साल लिखूंगा। ये बात तो अभी शायद उनके में नहीं है, लेकिन यहां वो कहते हैं मैं तो पंच परमेश्वरी को याद करके साम्य भाव को प्राप्त करता हूं। और वो आश्रम का था ना, उपसमयामी सम्मम। हाँ जी हाँ जी, परिशुद्ध दर्शन युत समभाव आश्रम प्राप्त कर, पंक्ति है ना, तेसम विशुद्ध दर्शन राण पहाणा समम समासिज्य। इनने ऊपर ही कही थी कि मैं मंगलाचरण करूंगा और फिर प्रतिज्ञा करूंगा, मैं साम भाव को प्राप्त होता हूं। वे कहते हैं मुझे साम भाव प्राप्त करने के लिए मैं एक तरह से प्रवचन साल लिख रहा हूं, उसकी सारी बात आ रही है। यहां से वो बात शुरू कर दी है, उन्हें वो आगे बताएंगे। अभी ये पांच पेज हैं, ये पांच छंद हैं, इसलिए अभी इनका अर्थ करने बैठेंगे तो पिछली बात रह जाएगी। पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, हिंदी का और पढ़ना है, पढ़ लो ध्यान से पढ़ना लेकिन। हाँ बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज नंबर आ जाएगा तो आज ही बताऊंगा, लेकिन पहले ही पढ़ते हैं, आना चाहिए। जब हम तो पढ़ते थे ना कई तरह पर, इस प्रकार मंगलाचरण और टीका लिखने की प्रतिज्ञा करने के उपरांत इन पांच गाथाओं में आचार्य अमृतचंद आचार्य कुंदकुंद रचित प्रवचन साल के मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य संबंधी पांच गाथाओं की उत्थानिका लिखते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। इस संस्कृत में देखो, पूरा मूल ग्रंथ में ये जो गाथाएं शुरू होती है ना, उसके पहले कुछ गद्य की टीका है। तीन तो छंद है और फिर गद्य है, ये उस गद्य टीका का अर्थ है। समझ रहा ना, मिल गई संस्कृत में। संस्कृत में जो तीन छंद हैं मंगलाचरण के, उसके बाद जो गद्य की तीन चार लाइनें हैं, उसके बाद फिर गाथाएं शुरू होती हैं अर्थ सूत्रावतार लिख करके। तो ये उनका अर्थ है जो नीचे अपन पढ़ रहे हैं। जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, ये विशेषणों पर ध्यान देना। जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, माने जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। जो संसार को समुद्र बताया ना, तो समुद्र में कोई फंस गया हो बीच में, तो कहते हैं वो कोशिश करता किनारे पर पहुंचने की, लेकिन अभी तक किनारा बहुत दूर था, दिखाई तक नहीं देता था। अब दिखाई दे गया है और एकदम नजदीक है। यानी वो कौन 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 है जे, किनको है नजदीक, ये लिख रहे हैं अमृतचंद। किन के बारे में, कुंद कुंद के बारे में। ये लगा कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है ऐसे कुंद कुंदाचार्य दे। उन्हें ये कहना है कि बिल लिख रहे प्रवचन सार, इसलिए वो कहते हैं जिन्हें साथी से विवेक ज्योति प्रकट हुई है ऐसे कुंद कुंद, समझ रहे ना, जिनका एकांत बाद रूप समस्त अविद्या का अवनिवेश अस्त हो गया है, जितनी भी एकांतवाद है, मिथ्या विद्या है, अविद्या है, उसका जो अभिनिवेश, अभिनिवेश माने आग्रह मान्यता अस्त हो गया है, ऐसे कोई आचार्य कुंद कुंद देव, ऐसे यहां भी उन्हें तो ऐसे कोई लिखा, अब अपन ने खोल दिया कुंद कुंदाचार्य देव। ये सब कुंद कुंदाचार्य को तीन विशेषण दिए, ये अमृतचंदाचार्य के प्रति, अमृतचंदाचार्य की कुंद कुंदाचार्य के प्रति जो अतिशय भक्ति है, अकोरी भक्ति नहीं, उनको अंदर से ये फीलिंग होता है, उनका ये शास्त्र पढ़कर लगता है कि ये आदमी का संसार किनारा अत्यंत निकट है, है? अब आ गए जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, ठीक है, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, विवेक तो विवेक ही है लेकिन सातिशय माने निरंतर वो विवेक ज्योति जागृत ही रहती है, ऐसी बहुत लोगों की है कि विवेक ज्योति जागृत हो गई फिर अपने काम से लग गए, फिर जब मौका होगा तो ज्योति फिर जला ली, ख्याल में ना, टॉर्च हाथ में ले ली, जब जरूरत पड़ी तो जला ली, फिर देख ली तो चले गए। और एक ऐसी एक क्यों माथा पड़ते हो बार बार डॉक्टर साहब को टॉर्च जलानी पड़ती है, एक टॉर्च ऐसी लगा दो ना ऊपर से जो इस पर पड़ती ही रहे, है ना, विवेक ज्योति प्रकट हो गई है और एकांतवाद का समस्त अविद्या और उस अविद्या का आग्रह अस्त हो गया है, मैंने वो खत्म नहीं रहा है, ऐसे कोई अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, तो देखो कोई माने आचार्य कुंद कुंद देव और अनेक परमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, है ना, परमेश्वरी अनेकांत विद्या, परमेश्वरी अनेकांत विद्या माने क्या, भगवान परमेश्वर ने समोषण में दिव्य ध्वनि में जिस विद्या को पढ़ाया वो पारमेश्वरी विद्या कहलाती है, समझे ना, मतलब कि एक शास्त्र है एक अध्ययनियों में भागवत, ये भागवत शास्त्र का नाम भागवत है, अपने यहां भगवती आराधना है ना, ऐसा उनके भागवत नाम का ही शास्त्र है ना, और गुरुदेव श्री नियम सार को भागवत शास्त्र कहते थे, भागवत माने क्या, भगवान के द्वारा कहा हुआ वही परमागम बात तो वही है, जिन्हें उसके विशिष्ट विशिष्ट नाम जो शास्त्रों में आए हैं भगवान के द्वारा बताया हुआ शास्त्र, तो पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके उस समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, अब ये देखो समस्त पक्षों का परिग्रह, हम आप जो अपन को जो परिग्रह की बात समझ में आती है ना, तो मकान जायदाद रुपया पैसा धंधा यही समझ में आता है कि नहीं आता, और स्त्री पत्ते बाल बच्चे हैं, ये तो परिवार है, अरे परिवार भी परिग्रह होता है, ये भी हम भाषा में तो सीख गए होंगे शास्त्र की से, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं होता, जैसा हमको मकान परिग्रह लगता है ऐसा पत्नी बच्चा नहीं लगता है, क्योंकि मकान तो हमारी समझ में आता है कि 1 करोड़ में बिक जाएगा, अब पत्नी थोड़ी 1 करोड़ में बिकेगी, जिससे नगर पैसा खड़ा हो सके, हमें तो वो पैसा ही परिग्रह दिखता है। अब ये देखो गिनते गिनते जाओ, अब इनका दिमाग कहां पहुंचा, कहां कहां था परिग्रह, समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, कि जितने भी पक्ष हैं एकांती हैं, नित्य बात अनित्य बात जितने भी है एकांत की, ये परिग्रह है, इसको जिद लेके बैठ जाते हैं ना, आत्मा पर ही को जानता है नहीं जानता है, ये सब इन सबको परिग्रह कहा शांति जी। समस्त पक्षों का परिग्रह, रुपये पैसे का नहीं, स्त्री पदरादे का नहीं, चेतन नहीं, अचेतन नहीं, राज्य नहीं, क्योंकि वो मुनिराजों में जिनके बीच में बैठ के भी चर्चा करते थे, वहां तो यही परिग्रह दिखता था, न तो स्त्री दिखती थी, न मकान दिखता था, न रुपया दिखता था, नहीं निगम्बर जी का मंडल लेके बैठे थे है? तो क्या दिखता था, एक दिन बिगड़ जाते थे, नहीं नहीं ऐसा है, वो कहते थे ऐसा है, वो चर्चा में तो उनमें भी होता होगा ना, कभी मतभेद तो होता ही होगा ना, तो कहते समस्त एकांत के परिग्रह, समस्त एकांत के पक्ष का परिग्रह चला गया, उनको किसी भी एकांत में रस नहीं है, स्वीकार सब करते हैं यथा योग्य, लेकिन किसी भी एक परिग्रह नहीं रहा। मैं किसको तिल तुस्मत परिग्रह, और एक उनने लिखा अपने को नियमसार में पद्मपद मालिकधारी देव ने टीका कहा है ना, उनने क्या लिखा, कौन सा परिग्रह लिखा है, एक शब्द आया उनने बहुत बढ़िया कि बस देह मात्र परिग्रह है, मेरे ख्याल यही कहीं आने वाला है आसपास में, मैंने आजकल में ही पढ़ा है, देह मात्र परिग्रह लेगा ना, अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त परिग्रहों का त्याग करके अत्यंत मध्यस्थ होकर, अब वो मध्यस्थ और तटस्थ का अंतर दादा ने बताया था एक दो दिन पहले प्रवचन में है ना, ये तटस्थ शब्द नेहरू जी का निकाला हुआ है, क्योंकि नेहरू जी ने जो राजनीति की थी, खासकर रशिया और चाइना के बीच में भारत को कैसा रखना, अमेरिका ये सब झगड़ते हैं युद्ध के मामले में कि क्या अपना हिन्दुस्तान का पक्ष क्या रखना, तो उन्होंने ये कहा था कि अपन को किसी का पक्ष नहीं लेना, उन्हें श्री कृष्ण की नहीं मानी, उन्हें बलभद्र की मानी, बलदेव की मानी, कि तुम तो लड़ो ही मत, लड़ोगे तो हम किसी के पक्ष में नहीं आएंगे, उसको उन्होंने मध्यस्थ से ज्यादा तटस्थ कहा, तटस्थ राजनीति का सिद्धांत नेहरू जी ने निकाला, और वो आज तक ऐसा आकाश है कि कोई ने राज्य बदल गए, भारतीय जनता पार्टी का आ गया, लेकिन उसको बदलने की बात कोई सोच नहीं पाया अभी तक, मध्यस्थ में थोड़ा डर ऐसा लगता था नेहरू जी को कि हम कुचल जाएंगे, दो आदमियों के बीच में रहेंगे पर अपन ज्यादा ताकतवर हुए तो वे अपन को नहीं दबा पाएंगे, अपन दबा देंगे दोनों को, और फिर जो अपन कहेंगे निर्णय देंगे मानना पड़ेगा, लेकिन वे ज्यादा मजबूत हुए अपन कमजोर हुए तो भी मत उनके बीच में हो गए तो दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो अपन कुचल जाएंगे, तो मध्यस्थ नहीं होना, मध्यस्थ माने दर्शन तुम्हारा मामला निपटाएंगे, माने हम तुम्हारे जज बनेंगे, तो जज तो वो शक्तिशाली बन पाता है ना, आजकल तुम्हारे जवेरी बाजार में भी होता है ना कि तुम इतना पैसा लाके दोनों रखो हमारे पास और फिर हम जो फैसला देंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम जाके चले जाओ हमें नहीं मानते तो हम क्या करेंगे, हम क्या जज बने, हम क्यों इतने माथा पत्ती करें अपना काम छोड़ करके तुम्हारे इस काम में क्यों लगेंगे, हम लगेंगे तो हम फैसला करेंगे, इतना बड़ा अधिकार लेते हैं वो कि जितना गवर्नमेंट के जजों को भी प्राप्त नहीं है, है? वो तो उनको तो ये कहना पड़ता है कि फिर हम गवर्नमेंट से कह देंगे तो गवर्नमेंट अंडा लेके आएगी फिर वो गिरफ्तार करेगी तुम्हें, वो डाकू को वो जज गिरफ्तार नहीं करेगा, यहां तो कोई ऐसा है नहीं पीछे, तो वो कहते लाओ तुम पहले ही हमारे पास रख दो, दोनों आदमी 25-25 लाख रूपये रख दो फिर हम तुम्हारा फैसला करेंगे, और फिर हम यदि तुम नहीं मानोगे हमारे फैसले को तो 25 लाख तुम्हारे हम चाहे इसे दे देंगे चाहे जब्त कर लेंगे चाहे जो कुछ भी करेंगे, तो मध्यस्थ आदमी को ये इंतजाम करना पड़ता है। नेहरू जी तो ये कहते हैं तटस्थ माने मैं तो हम अलग हो जाऊंगा, अभी तुमसे बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो तुम नहीं सुनोगे कोई मेरी बात, तो मैं झगड़े से अलग हो जाऊंगा, तुम करो जो दूध कैसे तुम करो। इसलिए उन्होंने तटस्थ शब्द निकाला था अपनी राजनीति में, मध्यस्थ की जगह वो तटस्थ शब्द को उन्होंने उपयोग किया था। अब ऐसा नहीं है ये अनेकांत में मध्यस्थ और तटस्थ के बीच में मैं बीच का हूं, मैंने कथनचित है और कथनचित नहीं है, आता नहीं ऐसा, कथनचित व्यवहार से है और निश्चय से नहीं है, तो कथनचित है और कथनचित नहीं है, तो ना ये वास्तव में मध्यस्थ है ना ये तटस्थ है। तटस्थ का मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं मानता, तो तुम तो वस्तु स्वरूप ही क्यों नहीं मानेगा। मेरे कहने का मतलब यह है तुम्हारे पक्ष माने आग्रह के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, समस्त पक्षों का परिग्रह जिनका समाप्त हो गया है ना, और अत्यंत मध्यस्थ होकर, संस्कृत में भी क्या मध्यस्थ ही है ना, कहा है देखो पक्ष परिग्रह अत्यंत मध्यस्थ भूत्वा, दूसरी लाइन में है ना, समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम, कहते चारों जो पुरुषार्थ हैं उनमें ये सारभूत है ये पुरुषार्थ, इसलिए वो आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत हितकारी है। ऐसे पंच परमेश जी के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य, पंच परमेश जी की कृपा से प्रसाद से, अपना प्रसाद बोलते ना मंदिरों में प्रसाद बांटने लग गए, अरे गुजराती लोग बांटने लग गए, लड्डू बांटने लग गए थे, मुश्किल से लड्डू से हटाकर किताबों पर लाए, उन्हें हर एक को प्रभावना करनी है, प्रभावना के नाम से लड्डू बांटना है, और लड्डू बांटना नहीं लड्डू खाना है, फिर वही मंदिर में ही खाने लगे। आप परीक्षा में बताया ना शांति जी परमेश जी के प्रसाद का अर्थ, कोई प्रसाद प्रसाद नहीं देते हैं वे, उनमें हमारी इतनी श्रद्धा होने से हमें और हमने गहराई से उसमें अध्ययन मनन करके जो प्राप्त किया वो ही प्रसाद है पंच परमेश जी का, समझे ना, जो हमने कहते भगवान के मंदिर में हम गए, हम भगवान की हमने भक्ति करी, ये किया तो भगवान की हम पर कृपा हो गई और उनने हमें बहुत बढ़िया प्रसाद दिया, कहते और कुछ नहीं दिया, क्या दिया है, कहते हमें पुण्य बन गया अबू, अरे कहा है वो, कहते हैं जो तुम्हें मजा आ गया बब्बू, ये समझ रहे हैं ना, जब हमने स्वाध्याय किया समय सार पढ़ा भगवान आत्मा की बात आई और ये देख के हमको कितना लगा मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा करके तो एकदम मैं तो कली कली खिल गई, तो वो जो कली कली खिल गई वो पंच परमेश्वरी का प्रसाद था कि भगवान ने हमें दिया, कि कांजी स्वामी ने हमें दिया या किसी ने दिया, उसी का नाम दिया है, जो हमें मिल गया उसमें जो होना था निमित्त उपादान, जिसका जो तुम निमित्त भी हो गए, हमारा उपादान भी हो गया, हमने पढ़ना जो भी हो गया सब हो गया, शास्त्र में शास्त्र भी हो गया, वो मिलकर के जो मिला वो इन सब का प्रसाद है, बस कदम उसी को प्रसाद कहते हैं, क्या शास्त्र का भी वही प्रसाद है, गुरु का भी वही प्रसाद है, देखो कितने अंदर से कृतज्ञ थे हमारे आचार्य, जिस मंदिर में बैठकर उनने वो शास्त्र लिखा था, कहीं ना कहीं तो बैठना तो पड़े ना, ऐसी छाया में खिड़की के पास ऐसे कहीं बैठ जाते होंगे कि नेचर उजाला रहता होगा और वहां बैठ के लिखते रहते होंगे, तो उसकी भी कृपा मानी अंत में, उसका भी उल्लेख किया कि मैंने चंद्रप्रु भगवान के मंदिर में बैठकर ये शास्त्र को रचा है, इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत उसके प्रति कृतज्ञ हूं, कृपा बंद हूं। अब और के बात तो एक और भी है लेकिन उसमें जरा कमजोर पड़ती है कि फलाने राजा के राज्य में मैंने ये लिखा तो मैं उस राजा का कोई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उसको कृतज्ञ हूं, राजा ने क्या किया कि राजा ने चौकीदारी करी, वहां झगड़ा नहीं होने दिया, नहीं दंगा होता, हिंदू मुसलमान दंगा होता, मारपीट होती, हमारा मकान तोड़ दिया जाता, हमें गांव छोड़ के जाना पड़ता है। अब वो भी चौकीदारी करते रहे बाहर, क्यों इस चौकीदार करते रहते ना मनुष्य वाले, ये अपनी चौकीदारी तो करते ही हैं। ये बाबूनगर में शांति रखते हैं तो अपन सब लोग शांति से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, बोलो। और यहाँ पर एकदम दंगा हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाए, सबके माँ बाप को पता चल जाए एक दंगा हो रहा है जयपुर में, तुम तो भाग जाओ, जल्दी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जब ठीक हो जाएगा जब जाएंगे, पढ़ाई बेहतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो उस राजा को भी उनने याद किया। वो राजा वाला पॉइंट मुझे कमजोर इसलिए लगता था कि राजा के डर के मारे ऐसा करता है, इसलिए मैं उसको मंदिर की बात करता हूं। देखो बनारसी दास के जब अकबर की मृत्यु का समाचार बनारसी दास ने सुना तो वे एकदम बेहोश होकर गिर गए, उनका माथा फूट गया, शेरों खून निकल गया, बहुत खून निकल गया बनारसी दास का। घर वालों ने आया बुलाया, बेहोश हो गए, कट्टा मट्टा बांधा और महीनों पर पलंग पर पड़े रहे। ये आत्मकथा में लगा उन्होंने, तो हम वही लड़ रहे क्या, इन्हें काय का डर कि राजा के कौन थे, अकबर इनका कौन था, वो तो एक मुसलमान राजा था और ये तो आध्यात्म कभी थे, संसार से डरागी इतना राग उनसे, इतना डर, न डर न राग, डर भी और राग भी, काय का कि वो शांति जो थी जिसमें रह करके भी अध्यात्म चर्चा करते थे, लिखते थे, बोलते थे और उनकी धर्म साधना हो रही थी, अब वो भंग हो जाएगी, क्योंकि कोई बाप बेटे को राज तिलक तो करता नहीं था, सब मार मार के ले करके हत्याएं करके फिर युद्ध होते थे संगे भाइयों में इनमें और फिर बोझा करके, और ये कोई नियम है, ऐसा नहीं समझना कि ये कोई बहुत बड़ी बात होती थी। चक्रवर्ती जब मरता है उसकी लाश तो बाद में जलती है और देश के 32,000 टुकड़े उसके पहले हो जाते हैं, सुना कभी 32,000 टुकड़ों में बच जाता है वो राज्य, क्योंकि चक्रवर्ती का बाप कभी चक्रवर्ती नहीं हुआ और चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं हुआ। चक्रवर्ती वो खुद ही अपनी कमाई से होता है और वो खुद ही कमा के जाता है। कौन जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, ये सब आजाद हो जाते हैं, ये किसी की आज्ञा में नहीं रहते हैं, तो 32,000 टुकड़े हो गए ना, उनकी वो सीमा रेखाएं और फिर वो सब सारे झगड़े तो उसका पुण्य उसके साथ जाता है। तो एक राजा जिसके प्रताप से, जिसके नाम से, जिसकी उस दबंगाई से देश में शांति रहती है, दंगे नहीं होते हैं, प्रजा को शांति से रहने को मौका मिलता है, समझे ना, इसको भी इतना बड़ा उपकार मानते थे वे। हम तो हमारे घर में नाली रसोई तक पानी पहुंचा दिया उनने, राशन भी घर तक पहुंचा देंगे, अब कहे तुम अपना खाता दे दो बैंक का तो पैसा भी तुम्हारे लिए पहुंचा देंगे इस बैंक में, काहे के सब्सिडी सब्सिडी के, और हम भी उनका उपकार मानने को तैयार नहीं है, और क्या क्या करने वाले हैं जो हमें पता नहीं है, क्यों ये सोचो कितना कितना फर्क है, तो उनका भी उपकार मानते, ये भी आपको शांति से यहां पढ़ने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से शाम तक आप समय सार पढ़ रहे हैं और किसी ने ये नहीं कहा गए यहां से हाथ शांति से वहां बैठे रहने दिया, भूख ने परेशान नहीं किया, क्योंकि दिन होगा नहीं उसके पहले तुमको नाश्ता करा दिया गया, उसके समय पर खाना दे दिया गया है, ये अनंत उपकार नहीं है हमारे आचार्यों से, देखो वो जी कहना मेरे मालूम है समय हो गया है, भग गया है, ठीक है, बढ़िया है, बात सुनिए।